Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Buddha ke jivan mein pehle vishad yog hain. Unhe gyan hua. Aur ye samanya gyan hai. इस नश्वरता का बोध हो गया, ये शरीर रोगग्रस्त है, ये शरीर वृद्ध होने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति को मरना है, और इतने विक्षिप्त हो गए और उसी विक्षिप्त अवस्था में उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। ये विषाद योग है। और जब गुरु के पास जाते तो गुरु आपको आश्वस्त करता है, गुरु आपको ज्ञान का उपदेश करता है। जैसे नारद जी महाराज जी विक्षिप्त हो गए, नारद जी महाराज जी को प्रचार करना था, मानव मात्र के जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रचार करना था। और जब सनकादियों के पास गए, सनकादियों के सामने अपनी जिज्ञासा रखी और सनकादियों ने आश्वस्त किया, उन्होंने कहा कि उपाय है और पहले ही उपाय है, कोई नया उपाय नहीं है। बोले पहले से उपाय तय है, ज्ञान भक्ति वैरागी को बढ़ाने वाले। और वो कौन सा है? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र। और गुरु जब हमें आश्वस्त करते हैं, आश्वस्त ये परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान जब ज्ञान का उपदेश करते हैं, परोक्ष ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान ये दोनों साधन की अवस्था है, जीवात्मा के साधन की अवस्था। जो भी साधक गुजरता है तो इसी अवस्था से होकर गुजरता है, उसको परोक्ष ज्ञान हो जाता है। ये मन की अवस्था है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। मनसा एव इदम आप्तव्यम, आपको मन से ही उस परमात्मा को जानना है। और वो मन कैसा होना चाहिए, फिर ये दो अवस्थाएं उसकी आती हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान से सुसंस्कृत जो मन है, श्रवण मनन निदिध्यासन से सुसंस्कृत जो मन है, उसी मन के द्वारा आत्मसत्ता जानने योग्य। और ये जो परोक्ष ज्ञान है ना, ये बहुत गहरा परोक्ष ज्ञान है। और परोक्ष ज्ञान के अंगभूत भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। और आपके भगवत गीता के 16वें अध्याय की दैवी संपदा, अभयम सत्व संसिद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ये सारी जो संपदा है ना, ये सब अंगभूता है, अंगभूता ये परोक्ष ज्ञान के अंगभूता है। हमें परोक्ष ज्ञान में प्रवेश करना है तो सारी चीजें चाहिए, अभयम सत्व शुद्धि ही। ये बहुत सारे उपाय, बहुत सुंदर उपाय है वो। और वो सारे उपायों को जान के जीवन में धारण करने जैसे, दैवी संपदा से सुसंस्कृत मन जब वो श्रवण मनन करता है तो उसके अंदर परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाता है। और परोक्ष ज्ञान का उदय माने परमात्मा के अस्तित्व की गहरी अनुभूति। परोक्ष ज्ञान माने केवल सुनना नहीं है। पंचदशीकार ने कहा कि परोक्ष ज्ञान हुए व्यक्ति को यदि अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है तो वो ब्रह्मलोक चला जाता है, समझा। और वो ब्रह्मलोक इसीलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई कमियां रह गई थी, उसके अंदर कोई वासना रह गई थी और अपरोक्ष ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाया, तो ब्रह्मलोक जाएगा और लोक लोकांतरों में जाएगा, उसका पुनर्जन्म होगा। बहुत अच्छे कुल में, अच्छे समूह में वो पहुंचेगा और धीरे 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 फिर वो आत्मज्ञान तक पहुंच जाएगा। परोक्ष ज्ञान माने गहरी अनुभूति, तत्व की गहरी अनुभूति, अस्तित्व की अनुभूति वो है। और इतना ज्ञान हो है कि जैसे अपरोक्ष हमने सुना है। अब मैं आपको पूछूं कि आपने कभी वृंदावन देखा? आपने कहा नहीं देखा, लेकिन है कि नहीं है? अब आपको कोई बोले कितना भी समझाए कि भैया वो नहीं, आप मानोगे? नहीं मानोगे, वो परोक्ष ज्ञान है। लेकिन मैं आपको पूछूं स्वर्ग है कि नहीं, ईमानदारी से। यहां कितने लोग हैं जो स्वर्ग की प्रति बहुत गहरे अस्तित्व का भाव रखते हो? जितना आप वृंदावन के प्रति गहरी अस्तित्व की भावना रखते हो, उतना स्वर्ग के प्रति नहीं रखते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी को पूछो कि नरक है तो बोले कि भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और आत्मा परमात्मा वो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कल शांति भाई सोमैया जी की बहन आई थी, लीला बहन कोटक, उन्होंने कहा कि महाराज भगवान है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम, वो ईश्वर है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़े कोई भगवान है। तो बोले माता पिता है। बोले सबसे बड़े भगवान हमारे लिए माता पिता है, माता पिता सबसे बड़े भगवान। बोले हमको नहीं मालूम वो ईश्वर है भगवान है, वो सही बात बोल रही। हम सबके मन में वैसा ही है। और एक बार यदि ईश्वर के गहरे अस्तित्व का बोध हो जाए तो आदमी के जीवन की पहली क्रांति है। एक दृष्टांत महात्मा लोग सुनाते हैं अस्तित्व का, परोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या है। एक बार कोई चोर अपने बच्चे के साथ चोरी कर रहा था, मारिक जगा और वो भागा, दोनों भागते भागते एक जगह पर सत्संग चल रहा था, सत्संग में जाके बैठ गए। वहां पर महात्मा जी उपदेश कर रहे थे चोरी नहीं करना चाहिए, ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ ईश्वर के नजर में सब लोग हैं। जैसे आजकल आपको हर जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि आप कैमरे के जद में हैं, आपको कैमरा देख रहा है, ऐसा लिखा रहता है, कैमरा देख रहा है आपको। आप भले ही कैमरे को नहीं देख रहे लेकिन कैमरा आपको देख रहा है, आपके ऊपर नजर है। ऐसे महात्मा जी सुना रहे थे ईश्वर की नजर में सब हैं, ईश्वर सबको जानता है, उसके नजर से कौन बच सकता है। महात्मा जी का उपदेश श्रवण किया दोनों ने, बाप बेटे ने, दोनों चले गए। जाने के बाद फिर एक दो दिन के बाद चोरी करने के लिए निकल पड़े। रात्रि का समय था और एक बहुत अच्छे घर में चोरी करने के लिए घुसते समय पिता ने बोला, बेटा सावधानी से तुम देखना, और जैसे ही मेरे को कोई देखने लगे, हमें कोई देखने लगे, तुरंत सूचना देना जिससे कि हम भाग जाए। बेटे ने कहा, पिताजी बिल्कुल ठीक, हम बाहर खड़े होकर देख लेते हैं। अंदर पिताजी चोरी करने के लिए गए, बहुत सारा माल निकाल रहे थे और उसी समय बच्चे ने जोर की आवाज लगा दी, पिताजी वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, भागो भागो। भागे भागे बहुत दूर तक भागे और दूर जाने के बाद पिता ने पूछा, बेटा कौन देख रहा था? बच्चे ने कहा, पिताजी वो ऊपर वाला देख रहा था, वो ऊपर वाला देख रहा था। लेकिन ये बात पिताजी समझ नहीं रहे थे, बोले ऊपर वाले के देखने से क्या होता है। अरे कहां, वो है भी कि नहीं, देखो दोनों में कितना बड़ा बदलाव। बच्चे ने कहा, अब हम चोरी नहीं कर सकते, वो देखने वाला है। ये क्रांति है, ये जीवन में बदलाव है, परोक्ष ज्ञान हुआ उसको, ये परोक्ष ज्ञान है। उसने देखा नहीं, देखने वाले को देखा नहीं है, केवल सुना है कि वो देखता है और वो सबको देखता है। उसके बाद उस बच्चे ने कभी चोरी नहीं की और बाप ने कभी चोरी छोड़ी नहीं। ये परोक्ष ज्ञान है। आपको मालूम है भगवान सर्वज्ञ हैं, वो मन की भी जानते हैं, तो आप प्रार्थना करोगे तो अपने मन की बताओगे ही नहीं भगवान को। आपको मालूम है, हे प्रभु हमारे मन की आप जानने वाले हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। प्रभु आप सबके हृदय में, आप जठराग्नि के रूप में, आप कणकण में, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म आकाशवत सर्वगतश्च नित्य मालूम हुआ, शास्त्रों के द्वारा मालूम हुआ परमात्मा कणकण में। और उस बच्चे को जैसे बोध हुआ वैसे बोध हो जाए उसी का नाम है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान माने कणकण में हर समय हर देश में वो परमात्मा है। अभी केवल इतना ही जानना बाकी है कि वो मैं हूं, वो जो कणकण में विराजमान है वो मैं हूं, या परोक्ष ज्ञान। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि आपको विलंब परोक्ष ज्ञान में है, अपरोक्ष ज्ञान में नहीं है। केवल विलंब है परोक्ष ज्ञान में, परोक्ष ज्ञान होना ही बहुत कठिन है, और परोक्ष ज्ञान होने के बाद अपरोक्ष ज्ञान तो हस्ताक्षर करना जैसा है। हस्ताक्षर करने में ज्यादा विलंब नहीं, फाइल बनाने में ज्यादा विलंब लगता है आपको। फाइल बनाने में बहुत विलंब लगता है, बहुत सावधानी से बनानी पड़ती है। हस्ताक्षर हो गया बात खत्म हो गई, और एक बार हस्ताक्षर हो गया वो बात खत्म ही हो गई। अब आपके हाथ में फाइल नहीं रहती हो। यह आत्मज्ञान होना माने तत्वमसी वाक्य का उपदेश श्रवण करना, और अंत में बोध हो गया कि मैं अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि बोध हमेशा आत्मवेदम सर्वम, सर्वम खविदम ब्रह्म। ज्ञान होने के बाद केवल आपका ही आपको ही ज्ञान नहीं होता है। उस समय आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं ज्ञानी और ये सारी दुनिया अज्ञानी। ज्ञान होने के बाद अज्ञान नहीं रहता है। फिर ये जो भेद है ना वो अज्ञान जन्य है। ज्ञानी और अज्ञानी का भेद भी अज्ञान जन्य है। ज्ञानी फिर अनुभव करता है आत्मवेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा है, ये सब कुछ परमात्मा है, ये सब कुछ ब्रह्म तत्व है। ये अपरोक्ष ज्ञान है, और अपरोक्ष ज्ञान शोकम तरति आत्मविद, अंतिम दो अवस्थाएं शोकनाश और आनंदावाप्ति, ये मोक्षरूप अवस्था है। आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, शोकनाश, अब जीवन के सारे शोक समाप्त हो गए। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अर्जुन ने कहा कि मेरे सारे शोक मोह नष्ट हो गए, ये शोकनाश है। और स्थितोस्मि, मैं अपने आप में स्थित हो गया, ये आनंदावाप्ति। अब वो परम आनंद में प्राप्त हो गया अर्जुन, ये मोक्षरूप अवस्था है। ये जीवात्मा की सात अवस्थाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है पंचदशी, बहुत सुंदर ग्रंथ। और ये दो जो बीच की अवस्था है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, ये साधन अवस्था है। इसलिए श्रुति कहते हैं मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन के द्वारा ही परमात्मा जाने जाते। लेकिन कौन सा मन? मन तो सबके पास है, मन जानने का साधन तो है, लेकिन कौन सा मन? हम सबके पास मन है, तो क्या उस सबके पास जो मन है उसके द्वारा भी? बोले नहीं, वो सुसंस्कृत चाहिए। श्रवण मनन निरिध्यासन आदि संस्कारों से संपन्न, परोक्ष ज्ञान संपन्न, दैवी संपदा संपन्न, अपरोक्ष ज्ञान संपन्न जो मन है उसी मन के द्वारा वो परमात्मा जाना जाता है, और दूसरे के द्वारा नहीं। वो मन का विषय आंख का नहीं है, वो मन का विषय कान का नहीं है, वो मन का विषय रसनेन्द्रिय का विषय नहीं, वो मन का विषय घ्राण का विषय नहीं है। माने केवल आपको परमात्मा को जानना है तो केवल एक मन साधन है, और उस मन को शुद्ध करना है बस। ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन है ना, ये सत्संग, ये मन की शुद्धि के उपाय है। आप श्रवण करते जाए, और श्रवण करते 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 आपका मन सुसंस्कृत होगा, और सुसंस्कृत होने के बाद आपको कोई ज्ञान के श्रवण की जरूरत नहीं रहेगी। आप होंगे बिस्तर पर, आप किसी भी उम्र में होंगे, अकेले बैठे होंगे घर में, और अचानक आपको वो तत्वस्यादि महावाक्य आपके स्मृति पटल पर अंकित होंगे, और उसी समय आपको आत्मबोध होगा मैं ब्रह्म हूं। वहां गुरु की जरूरत नहीं है, आपको श्रवण कर चुके, आपको उपदेश कर चुके गुरु। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि ये तत्वमस्यादि महावाक्य ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। एक बार आपने उपदेश श्रवण किया, आप श्रवण करने के बाद वो महावाक्य तब तक आपके पीछे पड़ा रहेगा जब तक आपके भीतर के अज्ञान को नष्ट नहीं करता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे वो दूसरे जन्म में हो। भगवान ने भी गीता जी में बोला, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा अभिक्रम नाशो नास्ति, आपके अंदर एक बार विजारोपण हो चुका अध्यात्म का, आपने अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ कर दी है और आप ये यात्रा कभी थमेगी कि नहीं? बोले नहीं। हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए सत्संग श्रवण छोड़कर, साधना छोड़कर घर में बैठ गए, आराम से टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अपने घर के लोगों के साथ आनंद मना रहे हैं, भूल गए साधना को, भूल गए, लेकिन आपकी यात्रा बंद हो गई, खत्म हो गई? नहीं नहीं नहीं, आप अंतर यात्रा में हैं। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं तो वहां बैठ के हलवा पूड़ी खाते कि नहीं? हां, वहां पर भी बढ़िया बढ़िया आप ऑर्डर करते हैं, भैया ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, और बैठ करके आनंद मना रहे हैं, तो आपकी यात्रा थमी कि नहीं? आपकी यात्रा नहीं थमी, आप यात्रा पर ही हैं, और आप यात्रा में बैठ के बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, आप सो गए, आराम कर रहे हैं, ताश के पत्ते भी खेलते हैं लोग, ट्रेन में बैठ के आदमी ताश का पत्ता भी खेलता है, लेकिन ट्रेन ये नहीं बोलती कि भैया अब तुम ताश के पत्ते खेल रहे हो, तुम्हारी यात्रा थम गई, और माला जप कर रहे हैं और आपकी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही। नहीं नहीं, अब वो यात्रा में, दोनों यात्रा में, इसलिए बीच में प्रतिबंध आ भी जाए, कभी अवरोध पैदा भी हो जाए, लेकिन भगवान कहते न्याभिक्रम नाशोस्ति। ये अभिक्रम माने आध्यात्मिक यात्रा का जो प्रारंभ है वो कभी खत्म नहीं होता है। परम पूज्य महाराज जी श्री कहते हैं कि वो गुरु की प्रेरणा, वो उपदेश, सारी चीजें आपके साथ आपके पीछे पड़ी रहती, धक्का देती रहती, चलो भैया चलो भैया। बहुत पुरानी बात में हम लोग परिक्रमा करने के लिए गिरिराज की, एक छोटा सा बच्चा था सरदार परिवार का, अब वो इतना थका मांझा, हम लोग उसको धक्का मारते थे पीछे से, दो बच्चे उसको धक्का मारने के लिए रखा था, उसको धक्का मारते रहो बस के, और यात्रा पूरी हो गई उसकी। ये तत्वमस्यादि महावाक्य, गुरु का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद आपके पीछे धक्का मारता है, और वो धक्का तब तक मारता है जब तक कि आपको आत्मज्ञान ना हो, ब्रह्मज्ञान ना हो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, भगवान ने बहुत गहरी बात बोली, थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, ये धर्ममय आत्मा परमात्मा ब्रह्म का जो श्रवण है आपने थोड़ा ही किया, ज्यादा नहीं किया, वो बीज है, ये कोई थोड़ा छोटा बड़ा होता है क्या? अरे बीज है, बीज है, बीज बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होता, खाने का अनाज बहुत ज्यादा स्टोर होता है, बीज तो बहुत थोड़ा सा होता है। अरे एक बीज भी पर्याप्त है वृक्ष बनाने के, एक बीज भी आपको वृक्ष बनाने के लिए बहुत सारे बीजों की जरूरत नहीं, एक बीज और आपने बोया वो अंकुरित हो गया। ऐसी है त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा सबसे बड़ा जो भय अज्ञान है, सबसे बड़ा भय आत्म विषयक अज्ञान है, सबसे बड़ा भय द्वैत है, द्वितीयाद्वय भयम भवति, और बहुत सारे दुख हैं जीवन के, उसका भय भगवान के सारे भयों को वो थोड़ा सा अनुष्ठान वो मिटा देता है। इसलिए मनसा एव इदम आप्तव्यम, आप मन के ही द्वारा जान लेते हैं, लेकिन मन ऐसा होना चाहिए सुसंस्कृत मन, श्रवणादि के द्वारा बना हुआ सुसंस्कृत मन, दैवी संपत्ति से सुसंस्कृत मन, परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान से सुसंस्कृत मन, उसी के द्वारा हम परमात्मा को जान लेते हैं आप्तव्य। और क्या जान लेते हैं? नेह नानास्ति किंचन, आप यही जानते कि हाँ नाना नहीं है, ये सब एक हैं, एक है। नाना माने अनेक, ये बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ रही, बहुत सारी चीजें, जैसे वाचारंभम विकारो नामधेयम मृत्यु के तिव सत्यम। दृष्टि कहती कि भाई ये अनेकों दिखाई दे रहे, अनेक नहीं एक है। कैसे? अरे बोले मिट्टी के बहुत सारे सकोरे दिख रहे, बहुत सारे घड़े दिखाई दे रहे, बहुत सारे बर्तन दिखाई दे रहे, मकान दिखाई दे रहे, मिट्टी के बहुत सारी चीजें दिखाई दे, आकृतियां और नाम बहुत सारी दिखाई दे रहे, नाम और आकृतियां बहुत सारी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन नाम और आकृतियों में क्या है? मिट्टी है। हम आकृतियों को देख रहे हैं, नाम को देख रहे हैं, लेकिन सबके अंदर मिट्टी है, मिट्टी है। जैसे सबके अंदर मिट्टी है, आपने मकान बोला तो भी क्या बोल रहे, किसको बोल रहे? आप मकान बोल रहे हैं तो भी आप मिट्टी को ही बोल रहे हैं। ये मिट्टी का ही नाम है। मकान है किसका नाम है? मिट्टी का नाम है। और आप बोल रहे हैं कि ये शरीर है, ये किसका नाम है? ये भी मिट्टी का नाम है। आप बोल रहे हैं कि ये माइक है, ये किसका नाम है? ये भी मिट्टी का नाम है। मृणमयम वाचारंभम विकारो नाम देयम, आकार और ये नाम अलग अलग मालूम होते हुए भी मृत्यु के तिव, इसके अंदर मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी ही सत्य है, मिट्टी एक है, आकार और नाम अलग हैं, लेकिन मिट्टी एक है। नेह नानास्ति किंचन, नाना नहीं अनेक नहीं एक ही मिट्टी है। स्वर्ण बहुत सारे दिख, स्वर्ण में अनेकता नहीं होती है, अलंकारों में अलग अनेकता है। अलंकार आप देखोगे तो अनंत मालूम पड़ेगा, अनेक मालूम पड़ेगा, आकृतियां नाम बहुत सारी विकृतियां मालूम पड़ेगी, लेकिन आप स्वर्णकार की दृष्टि से देखेंगे तो सबके अंदर अनुगत सोना। इसलिए आकृति का व्यामोह स्वर्णकार में नहीं है, नाम का व्यामोह स्वर्णकार में नहीं है, और इसीलिए नाम और आकृतियां जब मिटती हैं सोने की तो स्वर्णकार शोक को प्राप्त नहीं करता है, उल्टा आनंद को प्राप्त करता है। वो सोना गलाता है, गया नाम, पहले कुछ नाम और था और जब गला दिया तो, पहले कोई आकार अलग था और उसको गला दिया तो, और आश्चर्य की बात गलाने के पहले भी सोना था, और जब गला नहीं था कोई आकार और नाम था उस समय भी वो सोना था। आम आदमी सोचता है कि अरे रे रे तुमने ये हमारा अलंकार बिगाड़ दिया, बहुत अच्छा था, लेकिन स्वर्णकार की दृष्टि में वो नहीं है। स्वर्णकार की दृष्टि में सारी चीजें नारायण, वो सोना है। मिट्टी के दृष्टि के आदमी के सामने सारी मृणमय मिट्टी है, वहां कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहते हैं नाना न आस्ति किंचन, यहां कोई नाना चीज नहीं है, केवल दृष्टि में नानात्व, दृष्टि में नानात्व भ्रमजन्य है। ये नानात्व हमारे दृष्टि का विषय, वस्तु का विषय नहीं है, ये दृष्टिगत चीज है, ये आकृतिगत चीज है, ये वस्तु निष्ठ चीज नहीं है, नानात्व वस्तु निष्ठा नहीं है, ये दृष्टि की निष्ठा है। और एक बार हमने जान लिया, जानने के बाद फिर सर्वत्र एकत्व का बोध, और जो इस प्रकार जानता है वो संपूर्ण शोक मोहन से तर जाता है, और जो नहीं जानता है वो व्यक्ति मृत्यु हो स मृत्युम गच्छति, वो जन्म से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और यहां सीधा सीधा अर्थ कीजिए, मृत्यु हो स मृत्युम आपनोति, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, माने मरते मरते मरता है, वो मरता ही रहता है। हम लोग मरते हैं कि मरते 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 हैं? हम लोग मरते 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 हैं, मरते 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 हैं, कितने बार मरते हैं? हम एक बार नहीं मरते, हम क्षण क्षण मरते हैं। हम इस शरीर, मरण धर्मात्मा, इस शरीर को अपनी आत्मा समझते हैं, अपना स्वरूप समझते हैं, और धीरे धीरे मरते हैं, क्षण क्षण मरते हैं, क्योंकि शरीर क्षण क्षण मरता है, और शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण हम भी क्षण क्षण मरते हैं। या इह नानेव पश्यति, यहां नाना देखता है। और जो मृत्यु है ना आकृति की, मृत्यु नाम की, आश्चर्य की बात तो ये है, मिट्टी की मृत्यु नहीं होती है। आपने बहुत सारे घड़े रखे, बहुत सारे घड़े रखे, सब घड़ों को आपने तोड़ दिया, घड़े टूटे, बारिश हुई, टूट गए। बहुत सुंदर सुंदर घड़े बना के रखे थे कुंभकार ने, बारिश हुई, सारे घड़े नष्ट हो गए, मर गए। वो मरना क्या है, घड़े का मरना है कि मिट्टी का मरना है? ये आकृतिगत है। वहां मर गया, नाम मर गया, अब उसका नाम नहीं रहा घड़ा, ये नाम नहीं रहा, ये मृत्यु जो है मरना है, विनाश है, परिवर्तन है, आकृतिगत है। ये नाम का है, वास्तविक मिट्टी में न कोई जन्म है और न कोई मृत्यु है। सोने में क्या जन्म और क्या मृत्यु, ये अलंकारों की मृत्यु, अलंकारों की मृत्यु है, उसके नाम की मृत्यु, आकृति की। इसलिए श्रुति कहती कि जो नाना देखता है, जो अनेकता देखता है, उसी के दृष्टि से जन्म है, उसी के दृष्टि से मृत्यु है। लेकिन जो एक देखता है उसके दृष्टि से न जन्म है और न उसके दृष्टि से मृत्यु है। वो अविनाशी तत्व आत्मा व्यापक चैतन्य सत्ता है। ओम शांति शांति।